नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। लोकसभा में इस समय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा चल रही है। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वर्ष 1875 में लिखा था। चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के मंत्र ने समूचे देश को शक्ति और प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि इस गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन को ऊर्जावान बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वंदे मातरम का स्मरण इस सदन के सभी सदस्य और देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है।
भारत हर चुनौतियों को पार करने में सामर्थ है। वंदे मातरम के भाव की वो ताकत है। वंदे मातरम ये सिर्फ गीत या भावगीत नहीं, ये हमारे लिए प्रेरणा है। राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के लिए हमें जपजोड़ने वाला काम है और इसलिए हमें निरंतर इसको करते रहना होगा। हम आत्मनिर्भर भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं, इसको पूरा कर रहा है। वंदे मातरम हमारी प्रेरणा है।
प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राष्ट्रगीत के मुद्दे पर मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेक दिए। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने वंदे मातरम पर बहस को राजनीतिक रंग देने की कोशिश का आरोप लगाया। भाजपा ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वंदे मातरम पर चर्चा शुरू करने के समय सदन में उपस्थित न होने की आलोचना की। पार्टी सांसद संबित पात्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में वंदे मातरम के प्रति कांग्रेस पार्टी के धोखे को बेनकाब किया। संसद ने स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया, लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक में पान मसाला और केंद्र सरकार से अधिसूचित किसी भी अन्य वस्तु के उत्पादन पर उपकर लगाने का प्रस्ताव है। उपकर से प्राप्त राशि का उपयोग जन स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा पर किया जाएगा। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि हवाई यात्रा की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उड़ान ड्यूटी समय सीमा FDTL दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन पर श्री नायडू ने राज्यसभा को बताया कि सरकार कई उड़ानों के रद्द होने की स्थिति की जांच कर रही है। इंडिगो एयरलाइन ने नागर विमानन महानिदेशालय के कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया है। इंडिगो ने इसे बेहद असुविधाजनक बताते हुए ग्राहकों को हुई असुविधा और कठिनाई के लिए खेद व्यक्त किया। महानिदेशालय इस जवाब की जांच कर रहा है और उचित न होने पर कार्रवाई करेगा। भारत ने आतंक और उग्रवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई मजबूत करने के लिए भारत विरोधी उग्रवादी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने के ब्रिटेन सरकार के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे व्यक्ति और संस्थाएं पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। इससे अवैध धन के लेन देन और अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क पर अंकुश लगाने में भी सहायता मिलेगी। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत आज श्रीलंका को INS घड़ियाल जहाज से 700 मीट्रिक टन आपातकालीन राहत सामग्री त्रिंकोमाली भेजी। भारतीय नौसेना के तीन जहाजों पर 300 टन राहत सामग्री कल श्रीलंका को सौंपी गई थी। इस खेप के पहुंचने के साथ राहत सहायता की कुल मात्रा अब 1058 मीट्रिक टन हो गई है। भारत और यूरोपीय संघ EU ने आज मुक्त व्यापार समझौते FTA के लिए बातचीत में प्रगति की समीक्षा की और वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए मुद्दों को सुलझाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने EU के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मोरोस सेफकोविच के साथ बैठक के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये बात कही। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्ष 2014 से भारत के गन्ना उत्पादन में 44% की वृद्धि हुई है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कृषि सम्मेलन में कहा कि सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत किसानों की उपज का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए प्रावधान पेश किया है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ छुई खदान गढ़ई जिले में आज 12 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। फुटबॉल क्लब गोवा ने AIFF सुपर कप चैंपियन का खिताब जीत लिया है। गोवा ने कल गोवा के मडगांव स्थित फतोरदा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में ईस्ट बंगाल को हराकर खिताब जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।